नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री ने सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच चलने वाली गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी, दक्षिणी भारत और ओडिशा के कई हिस्सों में आज अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने गुजरात में सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उधना रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। ये ट्रेन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों को जोड़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा और गुजरात के बीच संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
ब्रह्मपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है।
प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा दोहरे इंजन वाली सरकार के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रही है।
ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। श्री मोदी ने कहा कि 2017 में वस्तु और सेवा कर GST लागू होने के बाद कर का बोझ काफी कम हो गया है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने BSNL द्वारा स्थापित 97,005 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के विकास में पिछड़ गया था और इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज और बुरला संबलपुर स्थित VIMSR को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अपग्रेड करने की योजना की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सूरत के उधना रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड सूरत से बिलिमोरा तक शुरू किया जाएगा।
सूरत से बिलिमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खोलने का। इसको काम बहुत तेजी से चल रहा है। इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी और सूरत से मुंबई 1 घंटा, सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा, तो ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कैसे मोदी सरकार ने इतिहास को संजोने, देशभक्ति की प्रेरणा देने और पीढ़ियों को बलिदान की भावना से जोड़ने वाले स्मारकों का निर्माण करके भारत की कालातीत विरासत और नायकों का सम्मान किया है।
एक राष्ट्र का निर्माण उसके नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और विरासत के संरक्षकों के साहस से होता है, जो त्याग और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित स्मारकों और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों के माध्यम से भारत की कालातीत विरासत और उसके नायकों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा स्मारकों का पुनरुद्धार और नए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए ऐसे प्रतीकों के महत्व को रेखांकित किया।
देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहुत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले लेकिन निर्णायक अध्यायों में से एक की स्मृति को जीवंत रखता है। तीन मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्रियों की यात्रा का वर्णन करता है, जो स्वतंत्रता के बाद से गणतंत्र का मार्गदर्शन करने वाली लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पुलिस कर्मियों की वीरता को नमन करता है, जबकि देश भर के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय गुमनाम जनजातीय नायकों को लंबे समय से अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हैं। भव्य भारत मंडपम एक वैश्विक परिवेश में सभ्यतागत वैभव को दर्शाता है। ये सिर्फ संरचनाएं ही नहीं बल्कि अतीत और भविष्य के बीच के जीवंत सेतु हैं, जो बलिदान का सम्मान, नेतृत्व का उत्सव और भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाले शाश्वत मूल्यों की पुष्टि करते हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव जो इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए जीएसटी संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली निवासी आकांक्षा ने जीएसटी में कमी के सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया।
गवर्नमेंट ने जो जिम और फिटनेस सेंटर्स में टैक्स कम कर दिए हैं, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब जिम और फिटनेस सेंटर्स की फीस कम हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जीएसटी कम कर दिया गया है, तो इससे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना भी अफोर्डेबल हो गया है। गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, इससे बिजनेस को भी फायदा होगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करेंगे और फिटनेस सेंटर्स जाएंगे। तो इस डिसीजन से सबका बेनिफिट हो रहा है, एंड मेनी ऑफ अस आर ग्रेटफुल एंड वी वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। समर्थ सिंह के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग मार्केट मंत्रा के फोन इन कार्यक्रम में आज शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे फोन नंबर 0112371717 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया। प्रथम सचिव ने कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन करना पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है। भारत के साथ शांति चाहने के शरीफ के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविरों को बंद करना चाहिए और वांछित आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए।
पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल।
भारत में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हमने इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग किया है और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात कही है। अगर वो ये सचमुच चाहते हैं तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंपना चाहिए।
Over to us terrorists wanted in India.
भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने फलस्तीनियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि भारत फलस्तीन में करोड़ों डॉलर की लागत से एक अस्पताल परियोजना पर काम कर रहा है। राजदूत ने कहा कि भारत का विदेश मंत्रालय फलस्तीन के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फिलिस्तीनियों के लिए भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय फिलिस्तीन में एक से ज्यादा परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से $1 मिलियन की परियोजना एक अस्पताल के लिए है। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत का विदेश मंत्रालय हम फिलिस्तीनियों के लिए 24 घंटे काम कर रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य क्षेत्र में बने दबाव के कारण ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों से प्रभावित जिलों में बाढ़ और जल प्लावन जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। अचानक बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और उड़ीसा आपदा त्वरित कार्रवाई बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्री मांझी ने जिला प्रशासन को बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों से राहत कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और दवाओं के सहित आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने को भी निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
उधर महाराष्ट्र के में मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। एक रिपोर्ट।
नांदेड़ जिला एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है, जहां लोहा, कंधार, अर्धापुर, मुदखेड़, नांदेड़, मुखेड़, नायगांव, देगलूर, धर्माबाद और हदगांव तालुके जलमग्न है। नांदेड़ हैदराबाद राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर सड़क परिवहन ठप्प हो गया है। लातूर जिले में अहमदपुर, रेनापुर, निलंगा और उदगीर तहसील में बाढ़ का पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है। हिंगोली जिले में बादल फटने जैसी बारिश हुई है, जिससे भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। जिला कलेक्टरों ने आज नांदेड़, लातूर, हिंगोली और धाराशिव में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने का आदेश दिया है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। 9 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 186 स्पर्धाएं होंगी। इनमें पुरुषों के लिए 101, महिलाओं के लिए 84 और एक मिश्रित स्पर्धा में स्प्रिंट से लेकर धीरज दौड़ तक शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच चलने वाली गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी, दक्षिणी भारत और ओडिशा के कई हिस्सों में आज अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।